लगभग एक साल बीत चुका था जब उस हादसे ने इशिका और अभिमन्यु की जिंदगी से काफी कुछ छीन लिया था। उस हादसे में उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया था। इस एक साल में उनकी जिंदगी धीरे धीरे फिर से पटरी पर लौटने लगी थी। न केवल अभिमन्यु और इशिका बल्कि केशव और राधिका की जिंदगी में भी काफी बदलाव आ गए थे। आखिरकार केशव ने बाकी लोगों की मदद से राधिका को शादी के लिए मना ही लिया था। राधिका की इच्छा के अनुसार केशव ने उसके लिए एक ग्रैंड क्रिश्चियन वेडिंग का अरेंजमेंट किया था। उनकी शादी के दौरान अंजलि ने इशिका के प्रेग्नेंट होने की खबर दी थी। ये न्यूज़ सुनकर इशिका और अभिमन्यु दोनों ही खुश थे, लेकिन तभी अचानक अभिमन्यु के पास किसी का कॉल आया। वो इशिका को छोड़कर तेज कदमों से गाड़ी की ओर बढ़ गया। अभिमन्यु अभी भी कॉल पर था। वो परेशान स्वर में बोला, आर यू श्योर पृथ्वी, उसने पूरे राजवंश एम्पायर के सिक्योरिटी सिस्टम पर अटैक किया है? आई मीन डेटा सेफ्टी के लिए एक डेडिकेटेड टीम है, फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाँ सर, मुझे लगा था कि मैं अकेले ही इसे हैंडल कर लूँगा, लेकिन पिछले आधे घंटे से पूरी टीम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही है, पर अफसोस वो नाकामयाब रही। ये किसी प्रोफेशनल साइबर क्रिमिनल का काम लग रहा है। हमारी सिक्योरिटी टाइट थी, एन्क्रिप्शन लेवल टॉप क्लास था, फिर भी वो अंदर घुस चुके हैं। टीम कुछ नहीं कर पा रही। अगर यही चलता रहा तो अगले 24 घंटे में स्टॉक जीरो पर पहुंच जाएगा। राजवंश एम्पायर और उसकी सारी ब्रांचेस सब एक झटके में बर्बाद हो जाएंगी, पृथ्वी ने हड़बड़ाहट में बताया। इस वक्त वो राजवंश एम्पायर के टेक डिपार्टमेंट में था, जहां सभी फाइनेंशियल फाइल से लेकर सीक्रेट डेटा तक हर छोटा बड़ा डेटा सेव करके रखा जाता था। अचानक एक साइबर अटैक हुआ और आधे घंटे में ही इसका असर दिखना शुरू हो गया था। अभिमन्यु तुरंत गाड़ी में बैठ गया। उसने ड्राइवर का इंतजार भी नहीं किया और खुद ही ड्राइव करने लगा। कॉल अभी भी चालू था। उसने कहा, ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। अफकोर्स ये किसी क्रिमिनल हैकिंग टीम का काम है। हमें भी किसी ऐसे ही आदमी को ढूंढना होगा जो इस तरह के कामों में माहिर हो। आपके कहने से पहले ही मैंने एक दो लोगों को इस काम पर लगा दिया है, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे इसे कोई लंबे समय से प्लान कर रहा था, पृथ्वी ने जवाब दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सचमुच राजवंश एम्पायर 24 घंटे में दिवालिया होने के कगार पर पहुंच सकती थी। पृथ्वी के कॉल पर सब कुछ बताने के बाद अभिमन्यु बहुत परेशान हो गया था। वो बिना किसी को कुछ बताए सीधा राजवंश एम्पायर की ओर रवाना हो गया। वहीं इशिका अभी भी वहीं खड़ी थी और अभिमन्यु को जाते हुए देख रही थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो अभिमन्यु सब कुछ छोड़कर वहां से चला गया। उसे कुछ बताने का मौका तक नहीं मिला था। इशिका अभिमन्यु को कॉल कर रही थी, लेकिन उसका फोन बिजी जा रहा था। वो उसके पीछे जाना चाहती थी, तभी राधिका और केशव उसके पास आए। उनके साथ रूही भी थी। इशिका को इस तरह हैरान और परेशान देखकर केशव ने तुरंत पूछा, अब क्या हुआ जिसकी वजह से तुम इतना स्ट्रेस ले रही हो, और अभिमन्यु कहाँ गया? डोंट टेल मी कि तुम उसकी वजह से शक्ल पर 12 बजाकर खड़ी हो। इशिका ने केशव की ओर देखा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसकी वजह से परेशान नहीं हूँ। इशिका नहीं चाहती थी कि इस खुशी के मौके पर केशव अभिमन्यु से नाराज हो जाए। साथ ही उसे ये भी नहीं पता था कि आखिर अभिमन्यु बीच में क्यों चला गया। केशव का ध्यान हटाने के लिए इशिका ने अपने हाथ में पकड़ी रिपोर्ट की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि आप फिर से नानू बनने वाले हैं? अभी मिस चौहान ने मुझे ये रिपोर्ट्स लाकर दी। क्या सच में, या फिर उसे बचाने के लिए ये सब कह रही हो? केशव ने उसे घूरते हुए पूछा। इशिका ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और फिर रिपोर्ट्स खोलकर केशव के सामने रख दी। जब केशव ने भी रिपोर्ट्स पॉजिटिव देखी तो उन्होंने प्यार से इशिका को गले लगा लिया। राधिका ने इशिका का हाथ सहलाते हुए कहा, चलो अच्छा है ना कि एक ही दिन में दो गुड न्यूज मिल गई, इस बार बेपरवाही मत करना। इशिका ने उनकी ओर देखकर हाँ में सिर हिला दिया। भले ही उसके चेहरे पर मुस्कान का दिखावा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अभिमन्यु की चिंता सता रही थी, जो बिना कुछ बताए अचानक चला गया था। सबका ध्यान वहां से हटा ही था कि तभी रूही ने इधर उधर देखते हुए इशिका से पूछा, मम्मा डैड कहाँ गए हैं? उन्होंने कहा था कि नानू और नानी की शादी के बाद हम सब साथ में पार्टी करेंगे। पार्टी की ही तैयारी करने गए हैं बेटा, इशिका ने जवाब दिया। इशिका को किसी भी तरह अभिमन्यु के पास जाना था। उसने राधिका की ओर देखा और कहा, आप रूही का ध्यान रखिएगा, मैं अभिमन्यु की हेल्प के लिए चली जाती हूँ। उसे भी न जाने क्यों रिसेप्शन पार्टी आज रात ही थ्रो करनी थी। इशिका ने राधिका को जवाब देने का मौका भी नहीं दिया और तुरंत वहां से निकल गई। राधिका ने उसे इस तरह हड़बड़ाते हुए जाते देखा तो मन ही मन बोली, पता नहीं इसे क्यों लगता है कि अगर ये मुझे कुछ नहीं बताएगी तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। इन दोनों के बीच क्या हुआ होगा कि ये इतनी हड़बड़ी में निकल गई? राधिका को खोया हुआ देखकर केशव ने उसके सामने चुटकी बजाकर कहा, अब तुम कहाँ खो गई? इशिका की प्रेगनेंसी को लेकर परेशान हो क्या? पिछली बार की बात अलग थी, लेकिन इस बार मैं खुद उसकी सिक्योरिटी देखूंगा। इस बार मैं किसी अनजान इंसान को मेरी बेटी के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। उस पार्थ रायचंद को भी मैं अच्छा सबक सिखा देता, लेकिन न जाने कौन से बिल में छुपकर बैठ गया जो अब तक नजर नहीं आ रहा। जाने दो ना, इशिका और अभिमन्यु भी आगे बढ़ गए हैं, तो उनके सामने पुरानी बातें करके उन्हें हर्ट मत करो। चलो बाकी गेस्ट्स को अटेंड करते हैं। इशिका और अभिमन्यु दोनों ही समझदार हैं, वे खुद देख लेंगे। राधिका ने केशव को समझाया। राधिका रूही के साथ केशव को सभी गेस्ट्स के पास ले गई। वहीं दूसरी ओर ऐशिका सीधे राजवंश एम्पायर जा रही थी। वो जानती थी कि अगर अभिमन्यु इतनी जल्दबाजी में बिना कुछ बताए निकला है तो जरूर वहीं गया होगा। अभिमन्यु पहले ही राजवंश एम्पायर पहुंच चुका था और इस वक्त टेक डिपार्टमेंट में मौजूद था। वहां कमरे में लगभग 20 प्रोफेशनल्स उस इशू को सॉल्व करने में जुटे हुए थे, लेकिन कोई भी इसे हैंडल नहीं कर पा रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी टीम हरेक डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी मेहनत करती है और अचानक कोई क्रिमिनल आकर इस तरह सब कुछ हैक करके ले जा सकता है? क्या तुमने इस मामले में पुलिस को रिपोर्ट किया? अभिमन्यु ने पृथ्वी की ओर देखकर पूछा। हाँ, मैंने साइबर डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दी है, लेकिन हम उन्हें सारी बात नहीं बता सकते। हमारा कुछ डेटा डार्क वेब पर रहता है और इसी बात का फायदा उठाया गया है, पृथ्वी ने बताया। अभिमन्यु अपनी आंखों के सामने अपनी इतने सालों की मेहनत जाया होते देख रहा था। वो लगभग 20 साल का था जब उसने अपनी स्टडी के साथ साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। भले ही साथ देने के लिए पूरी राजवंश फैमिली मौजूद थी, लेकिन सब जानते थे कि ये अभिमन्यु ही था जिसने राजवंश एम्पायर को इस मुकाम तक पहुंचाया था। इसी बीच ऐशिका वहां पहुंची। सिक्योरिटी गार्ड से उसे पता चल गया था कि अभिमन्यु टेक डिपार्टमेंट में है। यहाँ क्या चल रहा है? ऐशिका ने अंदर कदम रखते ही हैरानी से पूछा। टेक डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग कम ही थे और इस वक्त सभी काम में जुटे हुए थे। कमरे में तनाव भरा माहौल था। अभिमन्यु परेशान खड़ा था, पृथ्वी उसे कुछ समझा रहा था और उनकी नजरें सामने की स्क्रीन पर जमी हुई थी। ऐशिका को वहां देखकर अभिमन्यु उसके पास आया और बोला, कुछ खास नहीं हुआ है, बस थोड़ा डेटा इधर उधर हो गया, तो पृथ्वी ने कॉल करके बुला लिया। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें जल्दबाजी में बताना भूल गया था, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया ना? ऐशिका की प्रेगनेंसी में वो उसे किसी तरह का स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। अभिमन्यु के चेहरे पर भले ही हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों की टेंशन ऐशिका से छुपी नहीं थी।
ऐशिका ने अभिमन्यु को घूर कर देखा और कहा, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, मैं स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? अगर बात इतनी सी होती तो तुम इस तरह घबरा कर वहां से नहीं जाते। जो भी है मैं संभाल लूंगा, चलो घर चलते हैं, अभिमन्यु ने भारी आवाज में ऐशिका के गाल को सहलाते हुए कहा। ऐशिका ने तुरंत नामे सिर हिलाया। तुम्हारी जरूरत इस वक्त यहां है, तो सब ठीक होने का दिखावा मत करो। तुम नहीं बताओगे तो मैं पृथ्वी से पूछ लूंगी, बेहतर होगा कि तुम खुद ही सब कुछ बता दो। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और कुछ पल रुककर कहा, कंपनी के डेटा पर साइबर अटैक हुआ है, वे हमारा डेटा चुरा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। पिछले 2.5 घंटे से ये चल रहा है और वे लगभग 25% डेटा स्टोल कर चुके हैं। अगर यही चलता रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे ऐशिका। आई डोंट नो ये कौन कर रहा है। क्या तुमने किसी हैकर से बात की? वे इस तरह के मामलों में ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, कई बार प्रोफेशनल से ज्यादा हैकर्स ट्रेंड होते हैं, ऐशिका ने जवाब दिया। अभिमन्यु की बात सुनकर वो भी परेशान हो गई थी। हाँ, पृथ्वी ने कुछ हैकर्स को इस काम में लगा रखा है, पर कोई फायदा नहीं। इंडिया के टॉप हैकर्स को पृथ्वी ने काम पर लगा रखा है, वे भी इसे रोक नहीं पा रहे। मुझे नहीं लगता कि ये किसी से हो पाएगा। बेहतर होगा कि मैं अपनी उन कंपनियों की सिक्योरिटी स्ट्रांग कर लूं जो राजवंश एम्पायर से जुड़ी नहीं है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। अभिमन्यु को एक आखिरी ऑप्शन वही नजर आया जो उसे पूरी तरह बर्बाद होने से बचा सकता था। ऐशिका ने कुछ पल सोचा और फिर बोली, कई बार जो काम इंडिया के टॉप हैकर्स नहीं कर सकते वो वर्ल्ड के बेस्ट हैकर्स कर सकते हैं। मैं एक ऐसी शख्स को जानती हूँ जो इस काम में माहिर है, मैं उससे बात करके देखती हूँ, वो हेल्प कर देगी। ऐशिका की आंखों में उम्मीद की एक किरण थी। अभिमन्यु को भी कुछ होप नजर आई। वो जल्दी से बोला, क्या सच में ऐसा हो सकता है? वो जो भी है तुम उसे जल्दी कॉन्टैक्ट करो, हमारे पास टाइम नहीं है। ऐशिका, एक बार हमने अपना डेटा रिकवर करके उसकी सिक्योरिटी स्ट्रांग कर ली तो इसके पीछे जो भी है पुलिस उसे पकड़ ही लेगी। अगर उससे कॉन्टैक्ट हो गया और उसने सिक्योरिटी स्ट्रांग कर दी तो पुलिस को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इतनी माहिर है कि उसकी लोकेशन तक हमें बता सकती है, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो, ऐशिका ने सख्त आवाज में कहा और दूसरी ओर जाकर किसी को कॉल लगाने लगी। वहीं दूसरी ओर रूस के एक अपार्टमेंट में सुनैना रायचंद कई लोगों के साथ खड़ी थी। ये वे प्रोफेशनल हैकर्स थे जो इस वक्त राजवंश एम्पायर से डेटा चुरा रहे थे। सुनैना के चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। वो स्क्रीन पर देख सकती थी कि उसके हैकर्स कितने बारीकी से काम कर रहे थे। बहुत मुश्किल से इस काम में सक्सेस मिली है, तुम्हारी वजह से मेरा एक बेटा बर्बाद हो गया अभिमन्यु, दूसरा आज मुझसे नफरत करने लगा है, वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी, पिछले 1 साल से तुम्हें बर्बाद करने के लिए मेहनत कर रही हूँ। अगर 24 घंटे में तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सड़क पर नहीं ला दिया तो मेरा नाम भी सुनैना रायचंद नहीं, उसने गुस्से में तेज सांस लेते हुए कहा। हाँ, ये सुनैना का ही काम था। वो आज भी उस दिन को नहीं भूली थी जब ऐशिका ने लैब में आग लगा दी थी और उसका सारा इल्जाम पार्थ ने उस पर लगाया था। उस दिन के बाद वो पार्थ से सिर्फ एक बार मिली थी और उसमें भी पार्थ ने यही कहा था कि अब वो उसे इतना नफरत करता है कि उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सुनैना इस सब की जिम्मेदार इशिका और अभिमन्यु को ही मान रही थी। वो उनसे बदला लेना चाहती थी। उसके हैकर्स पिछले एक साल से इसकी तैयारी कर रहे थे और आज वे कामयाब भी हो गए थे। वहीं इशिका जिसे कॉल करने की कोशिश कर रही थी उसका नंबर बिजी जा रहा था। राजवंश एम्पायर के लिए समय का हर बीतता सेकंड बहुत कीमती था। ऐसे में उसका कॉल ना उठना इशिका और अभिमन्यु दोनों को ही परेशान कर रहा था। दो एक्स्ट्रा चैप्टर जोड़ दिए हैं ताकि सीजन 2 इससे कनेक्ट हो सके। पढ़कर समीक्षा कर देना। अगले पार्ट पर मिलते हैं। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।